आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्लास 10th के साइंस का 4th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनमें मोस्टली चीजें ऐसी होती हैं जो कार्बन की बनी होती है, जैसे कि हमारा फूड या फिर हमारे कपड़े, हमारे क्लोथ्स या फिर हमारी बुक्स और इस तरीके की और भी कई सारी चीजें ये जो होती हैं ये कार्बन की बनी होती है। हमारे जो फ्यूल यूज होते हैं व्हीकल्स में ये भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग कंपाउंड्स का हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर में कार्बन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और डिस्कस करते करते हम लोगों ने एक्टिविटी 4.1 के बारे में डिस्कशन की थी जो कि पेज नंबर 58 पर है। इसमें आपने क्या करना था, आपने एक लिस्ट बनानी थी ऑफ 10 थिंग्स, ऐसी 10 चीजों का जिनका आपने दिन भर में इस्तेमाल किया है। 10 चीजों को आपने इस तरीके से बांटना था कि उसमें से कौन सी चीजें मेटल की हैं, कौन सी चीजें ग्लास या क्ले की हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ना तो मेटल की हैं ना ग्लास या क्ले की हैं। और इसी आधार पे आपने एक टेबल बनाना था जिसमें 3 कॉलम बनाने थे और ये टेबल आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 58 पर ही है। और इसी टेबल में आपने अलग अलग चीजों के अलग अलग कॉलम में नाम लिखने थे। उसके बाद वो चीजें जो ना तो ग्लास की बनी है ना क्ले की ना मेटल की बनी है, उसमें से आपने देखा था मोस्ट ऑफ दी चीजें ऐसी थी जो कार्बन की कंपाउंड्स थी। तो इसीलिए आपको ये समझ में आया था कि कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे जीवन में। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं वो सारी कार्बन की बनी होती हैं, जो हमारे शुगर की चीज़ें होती हैं ग्लूकोज या सुक्रोज ये सारी की सारी कार्बन की बनी होती है। हमारा दूध जो होता है जो हम लोग पीते हैं रोज के रोज सुबह एक गिलास दूध जो पीते हो, आप लोग सोचते तो हो नहीं कि वो किस चीज़ का बना है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, आप लोग उसके बारे में रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि उसमें लैक्टोज नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन का कंपाउंड होता है। तो अगेन आप अपनी बॉडी को कार्बन दे रहे हो, तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी के सोर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, इसलिए आप लोग भी कार्बन कंज्यूम करते हो, खाते हो ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले कार्बन को बर्न करके। आपकी बॉडी के अंदर जब डाइजेशन होता है तो वहां पर भी कार्बन बर्न किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए, और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप अलग अलग तरीके से करते हैं, पढ़ने के लिए, दिमाग लगाने के लिए या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। तो इस तरीके से कार्बन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमंस के लिए, लिविंग बींग्स के लिए। फिर हमने बात की थी कि अर्थ पर किस तरीके से कार्बन होता है, एटमॉस्फेयर में किस तरीके से कार्बन होता है। अर्थ क्रस्ट पर कार्बन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.02% होता है, जो कार्बन के कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कोल और पेट्रोलियम के रूप में हमें मिलता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें कार्बन मिलता है और इसकी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 0.03% के करीब होती है। इतना सीखने के बाद हमने बॉन्डिंग इन कार्बन पढ़ना शुरू किया था और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्यों बनता है। हमने बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। कार्बन का एग्जाम्पल लेके हमने सीखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कार्बन को क्यों जरूरत पड़ी। जिस तरीके की दिक्कत कार्बन को झेलनी पड़ी उसी तरीके की दिक्कत उन और एलिमेंट्स को झेलनी पड़ती है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके एटॉमिक नंबर होती है 6, तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कराना है इनटू के एल एम एन शेल्स, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम एल शेल में डाल देंगे। अब जैसे ही हमने एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन डाले तो हमने ये देखा कि कार्बन के पास तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका ऑक्टेट तो पूरा हो ही नहीं रहा, तो ये तो स्टेबल नहीं है अभी, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए तो कहीं से ये गेन करेगा या फिर ये ऐसा करे कि इन 4 इलेक्ट्रॉन का ये दान कर दे तो ये हीलियम की जितनी इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं या तो वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं या वो डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट का मीनिंग ये है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, डुप्लेट का मीनिंग यही है कि अगर के शेल में उनके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हीलियम की जितनी उनको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस और वो बहुत स्टेबल होता है, तो हीलियम की जितनी अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर वो डुप्लेट नहीं पूरा कर रहा है तो उसे ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है, कार्बन को क्या दिक्कत आती है कि कार्बन ना तो चार के चार इलेक्ट्रॉन्स का दान कर सकता है, ना वो कहीं से चार इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये दिक्कत उसको आती है। अब हमने डिस्कस किया था बारी बारी से कि चार इलेक्ट्रॉन दान करने में या फिर चार इलेक्ट्रॉन गेन करने में उसे दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम होते हैं देयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उनमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उनमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, और ओवरऑल ये न्यूट्रल होते हैं। जो एटम्स होते हैं दे आर न्यूट्रल। और अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 ही उनके पास ऐसे चीजें होने चाहिए जो पॉजिटिव हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो नेगेटिव चार्ज का होता है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कार्बन के पास 6 नेगेटिव चार्ज है। अब इन 6 नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए, 6 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल बनाने के लिए इनके पास 6 ही पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। तो होते भी हैं इनके पास 6 पॉजिटिव चार्ज, और वो किस फॉर्म में होते हैं, वो प्रोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं। हर एक एलिमेंट जो होता है उनका जो एटम होता है उसमें जितने उनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल सेम नंबर में उनके पास प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही उसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, तभी हमारा कार्बन का एटम जो होगा वो न्यूट्रल बन पाएगा। अब देखो, अब पहला केस डिस्कस करते हैं जब कार्बन को दान देना पड़ जाता है, जब कार्बन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को दान में दे देता है, तो उस केस में क्या होता है। उस केस में यह होता है कि कार्बन के पास अगर उसने दान दे दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, केवल 2 हो जाएंगे। लेकिन उसने तो केवल अपने इलेक्ट्रॉन्स का दान दिया, प्रोटॉन्स तो दान में वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बात है, ये आप लोगों को कहीं समझ में ना आए न्यूक्लियस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो कार्बन कभी भी या फिर कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम कभी भी प्रोटॉन्स का दान नहीं करता, बस इतना समझ लो। इलेक्ट्रॉन्स का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन किया जाता है, प्रोटॉन्स का लेन देन नहीं किया जाता है। कि कहीं आप ये कह दो कि उसने इलेक्ट्रॉन का दान किया तो प्रोटॉन क्यों नहीं दान कर दिया, तो वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। कोई भी एटम प्रोटॉन्स का दान नहीं करता है, केवल इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। इसी वजह से कार्बन ने भी सोचा कि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, उसने मान लो कि अज्यूम कर लो 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो अब उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज और 6 उसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके का जो एटम हो जाएगा ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। इसको स्टेबिलिटी लेने के लिए करना था ना काम, जो इसने करना था इलेक्ट्रॉन जो इसने देने थे वो तो स्टेबल होने के लिए करना था, लेकिन यहाँ पर तो ये उल्टा अनस्टेबल हो गया, तो ये काम ये नहीं करेगा। साथ में अगर हमें किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। किसी से कोई चीज लेनी है आपको तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी किसी तरीके से। मान लो अगर आपको अपने दोस्त से कोई काम निकलवाना है, उसके पास कोई चॉकलेट पड़ी है, आपको एक चॉकलेट चाहिए, तो आप उससे मिन्नत करोगे कि यार एक चॉकलेट दे दे, प्लीज एक चॉकलेट दे दे। उसने आपको एक चॉकलेट दे दिया, थोड़ी सी आपने मिन्नत करी, अब आप सोच रहे हो कि 2 चॉकलेट मिल जाती उससे मुझे, तो आपको और ज्यादा गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। 3 चॉकलेट तो और गिड़गिड़ाना पड़ेगा, 4 चॉकलेट हो सकता है वो मना ही कर दे कि नहीं भाई मैं तुझे नहीं दूंगा 4 चॉकलेट। तो ऐसा ही हो जाता है कार्बन में भी। कार्बन का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 निकलवाने हो तो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, 3 निकलवाने हो और ज्यादा देनी पड़ेगी, 4 निकलवाने हो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और इतनी ज्यादा एनर्जी हम नहीं ला सकते कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए। तो ये दिक्कत कार्बन को झेलनी पड़ती है जब उसको इलेक्ट्रॉन देने के बारे में वो सोचता है। अब दूसरा केस, अगर वो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में सोचे कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए दान में, तो ऐसा भी वो नहीं कर पाता। उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें ये दिक्कत आती है कि मान लो अब हम पहले वाला केस समझते हैं कि कार्बन जब उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया तब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। लेकिन अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, यानी कि 4 उसके पास नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गए और पॉजिटिव तो अभी भी 6 ही है। तो इसमें क्या होगा, हमारा कार्बन जो होगा बड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, ये भी फेवरेबल नहीं होता है, ये भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनस्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी उसे, तो स्टेबिलिटी चाहिए थी, और यहाँ पर उल्टा ये अनस्टेबल हो गया, तो ये काम भी नहीं करेगा। और इसमें भी दिक्कत ये होती है कि कार्बन जो होता है वो साइज में छोटा होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाते, इसलिए कार्बन अनस्टेबल हो जाता है। ये तो कार्बन के बारे में बात हुई। दूसरे और एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें भी यही होता है, तभी जा करके वो सोचते हैं कि ना तो हम दान कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का, ना कहीं से हम गेन कर पाएंगे, तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे जहां पर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और इसी सिचुएशन को जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो वहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड नाम के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जिन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है उसमें क्या करते हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे एक जगह पर रखते हैं, उस इलेक्ट्रॉन का यूज दोनों ही एटम्स कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की जागीरदारी हो गई उसमें, दोनों का बराबर का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कह दे कि मैं हूं मालिक केवल इस इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरा वाला कह दे कि नहीं तू नहीं है, मैं हूं अकेला मालिक। तो अकेला मालिक इसमें कोई नहीं होता, इसमें शेयरिंग होती है। इसमें वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक को बिलोंग नहीं करते, वो दोनों यूज कर सकते हैं। जब जब उन लोगों को जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो दोनों यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोनों ही एटम्स जिन्होंने शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा हो जाता है या फिर ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। तो कार्बन जब बनाएगा कंपाउंड्स वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है जिसमें उसके एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन उसके के शेल में होता है। तो अब वो क्या करेगा, वो ऑक्टेट तो पूरा करेगा नहीं, वो ड्यूप्लेट पूरा करेगा। वो हीलियम के तरीके से अपने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, हीलियम के जैसा स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो दूसरे एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बोलता है कि तुम्हारे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलकर के शेयर कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों का ड्यूप्लेट जो होएगा वो पूरा हो जाएगा, हम दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में लास्ट में समझाया था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पेज नंबर 60 पर देखो फिगर 4.1, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उनके बीच में शेयरिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन की, वो दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि 2 हाइड्रोजन आए हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ने शेयरिंग की, दोनों इकट्ठा हुए, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा रखा, दोनों इसको इकट्ठा शेयर कर सकते हैं, दोनों का इक्वल भागीदारी है इसमें, कोई इसमें क्लेम नहीं करेगा कि केवल मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, दोनों इक्वली हैं, दोनों पार्टनरशिप है दोनों की। इसीलिए ऐसा बॉन्ड जो बनता है जिसमें पार्टनरशिप होती है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और इस तरीके का बॉन्ड जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो आयनिक बॉन्ड्स की तुलना में कम होती है। तो इतना तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे, अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। तो देखो एक तरीका तो फिगर 4.1 में जैसे दिखा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन की जो तरीका है वो एक तरीका तो वो है फिगर 4.1 वाला। दूसरा तरीका है कि हम लोग जो बॉन्ड होता है वो एक सिंगल लाइन से भी दिखा देते हैं। फिगर 4.2 देखो पेज नंबर 60 पर ही है, उसी में जो फिगर 4.1 के बिल्कुल नीचे फिगर 4.2, इसमें एक तरीका तो ऐसे है कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाओ 2 बॉल्स बना करके, या फिर आप H और H लिखो और बीच में उनके एक लाइन बना दो, छोटी सी लाइन बना दो, तो वो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पर H और H यानी कि हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन मैं अभी तो आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि अभी तो अपनी आप प्रैक्टिस बढ़ाओ, तो उसके लिए आप ये जो सिंगल लाइन वाला है इससे ना सीख करके आप अभी सीखो जो ये बॉल्स वाला है उससे पहले सीखो, उसके बाद जब आप लोगों को एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को ये भी जो लाइन वाला है उससे भी सीखना आ जाएगा। और ये जो एक लाइन है, जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक लाइन बनाई गई है, तो एक लाइन रिप्रेजेंट करती है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ये जो सिंगल लाइन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है। पेयर का मतलब क्या समझते हो, पेयर का मतलब दो, एक जोड़ी। अगर आप लोगों को एक जोड़ी पेन खरीदना हो तो आप क्या कितने पेन मिलेंगे आपको, 2 पेन मिलेंगे। अगर 2 जोड़ी पेन खरीदना हो तो 4 पेन मिलेंगे। इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो एक लाइन बनी है वो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2 इलेक्ट्रॉन कहो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कहो, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कहो, तीनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यूज भी होंगे ये वर्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से। तो वहां पर आपको क्या करना है, जितने पेयर बोले जा रहे हैं उसको आपको समझ लेना है कि वो 2 हैं। तो अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाए तो 2 × 2 करोगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 2 पेयर यानी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें, तो आपको समझ जाना है खुद से कि 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोजन के बीच में किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये समझ आ गया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लोरीन जो होता है, Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें किस तरीके से दो क्लोरीन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लोगों को जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है, दिखाना होता है इस तरीके से फिगर बना करके, डायग्राम बना करके, जब आपको दिखाना होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है एटम का। अब आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, उसमें आपको मैंने ये बताया था कि हम एटम बनाते हैं और उसके चारों ओर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने डालते हैं जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, इसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। अगर क्लोरीन के बारे में बात की जाए तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसे होता है, उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में यानी कि सबसे बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है केवल, उसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे Cl जो कि रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन के एटम को, सिंबल है क्लोरीन का, तो Cl लिखोगे आप और उसके चारों ओर आप लोग 7 इलेक्ट्रॉन बनाओगे, जो आप डॉट से भी बना सकते हो चाहे क्रॉस से भी बना सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। आप डॉट बनाओ, 7 डॉट बना दो क्लोरीन के चारों ओर या 7 क्रॉस बना दो क्लोरीन के चारों ओर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 होने चाहिए क्लोरीन के, एक क्लोरीन के चारों ओर 7 होने चाहिए। दूसरा वाला क्लोरीन जब बनाओगे, क्योंकि आप Cl2 का फॉर्मेशन करवा रहे हो, तो 2 क्लोरीन बनाओगे और दोनों क्लोरीन के चारों ओर 7 बनाओगे, एक क्लोरीन के चारों ओर 7, दूसरे वाले क्लोरीन के चारों ओर 7, इस तरीके से आप बनाओगे। 7 कह रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 नंबर लिख दोगे, 7 डॉट्स बनाओगे चारों ओर, 7 डॉट्स बनाओगे या फिर 7 क्रॉस बनाओगे। अब क्या करोगे कि इस तरीके से बनाना कि 2 क्लोरीन जो बनाओगे एटम्स, उनके सामने सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हों, मतलब कि एक क्लोरीन के एटम का 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, दूसरे वाले क्लोरीन के एटम का 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स के सामने सामने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, 2 क्रॉस बनाए गए हैं, ठीक ऐसा ही क्लोरीन में भी बनेगा, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और वो सिंगल बॉन्ड क्या दिखा रहा है, वो सिंगल बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पर जब आप लोग क्लोरीन Cl2 का फॉर्मेशन दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, 2 Cl बनाओगे, एक Cl के चारों ओर 7 बनाओगे डॉट्स या फिर क्रॉस, दूसरे Cl के चारों ओर भी 7 डॉट्स या क्रॉस बना दोगे। अब इन 2 Cl के बीचों बीच, इनके सामने मतलब एक Cl और एक Cl और इनके बीच वाला जो पार्ट होता है, वहां पर 2 क्रॉस इकट्ठे रखोगे, एक के ऊपर एक, ऊपर नीचे रखोगे 2 क्रॉस या फिर 2 डॉट और 2 सर्कल बनाओगे। एक सर्कल जो होगा वो एक Cl एटम को कवर करेगा और दूसरा वाला सर्कल जो होगा वो दूसरे वाले Cl एटम को कवर करेगा, और ये दोनों सर्कल इस तरीके से बनाओगे कि जब एक Cl एटम के लिए सर्कल बना रहे होगे तो उसमें वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स या फिर दोनों डॉट जो आपने दिखाए हैं या क्रॉस दिखाए हैं वो उस सर्कल के अंदर आने चाहिए। यहाँ पर आप फिगर को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बोल पा रही हूँ तो इसलिए आप लोगों को फिगर जो है, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ उस तरीके से रिलेट करना है, मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर पेज नंबर 60 पर जो फिगर 4.2 है, इसमें देखो ये जो सर्कल बनाया गया है हाइड्रोजन के चारों ओर, ये किस तरीके से बनाया गया है, ये सर्कल जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर रहा है, साथ में एक हाइड्रोजन एटम को कवर कर रहा है एक सर्कल, और दूसरा जो सर्कल है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के लिए है और वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर रहा है और दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम को कवर कर रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को बनाने होते हैं, जब भी आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने होते हैं तो सर्कल्स ऐसे बनाओ कि वो एक एटम को कवर करे प्लस जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है उन सारे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी कवर करे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्लोरीन जो बनाना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, वो किस तरीके से बनाना है। और प्रैक्टिस जरूर करना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, 1 मार्क का 2 मार्क का, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मॉलिक्यूल आपको दे रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है वो सीख लिया, अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, अब हम लोग बॉन्ड जो है उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान से सुनते जाना है जैसे अभी तक आप लोग सुन रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीजन जो होता है, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का गैस जो होता है वो कैसे बनता है, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले सेम काम, हम लोग पहले जानेंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के सबसे बाहर छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये छह कहाँ से आए? ये यहाँ से आए कि जो ऑक्सीजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी के बचे जो 6 हैं वो उसके एल शेल में आ जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि एल शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाएगा तो इसको शेयरिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए जिसकी कमी इसके पास थी। तो यहाँ पर आप लोगों को फिगर 4.3 में पेज नंबर 60 पे दिखाया है कि हम जब ऑक्सीजन का बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन लिखा, ओ बनाया। ओ क्या है, सिंबल है ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन एटम के लिए ओ बनाया। उसके चारों ओर 6 क्रॉस या 6 डॉट बना दिए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा एक और बात सीखो, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई भी एटम उसके सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं 4 हैं 6 हैं, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। तो 6 क्रॉस या 6 डॉट आपने बना दिए। अब आपको पता है 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप जब इन 2 एटम्स को पास में लाएंगे तो आप ऐसे लाएंगे कि कॉमन एरिया में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 2 तो उसके खुद के और 2 वो शेयर कर रहा है। तो यहां पर काउंट करो, एक बॉल जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम है उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको भी बॉल के अंदर लेना होता है। तो मान लो यहाँ पर देखो फिगर 4.3 को बहुत ध्यान से देखो, पेज नंबर 60 पर एक ऑक्सीजन एटम को देखो, उसकी एक बॉल को देखो, उस बॉल के अंदर कितने क्रॉसेस आ रहे हैं, 4 तो उसके खुद के क्रॉस हैं और 4 क्रॉस जो हैं वो शेयर कर रहा है, और इस 4 क्रॉस में से भी जो ये शेयर कर रहा है 2 उसके खुद के हैं और 2 दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम से आए हैं, इसलिए 4 की ये शेयरिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 की कमी थी तो वो 4 क्यों शेयर कर रहा है, ये आप लोग सोचोगे ना, तो यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो, एक ऑक्सीजन को 2 की कमी थी तो वो अपने 2 लगाएगा, दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 की कमी थी तो वो भी तो अपने 2 लगाएगा, दोनों ऑक्सीजन की तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो इक्वल पार्टनरशिप रहेगी, इक्वल शेयरिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर जितने की कमी होती है ना उतने इलेक्ट्रॉन शेयर भी किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में याद करो, हाइड्रोजन को 1 की कमी थी तो उसने अपने 1 को शेयर भी किया था और दूसरे हाइड्रोजन ने अपने 1 को शेयर किया था, तभी वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑक्सीजन को इस केस में, ऑक्सीजन के केस में 2 की कमी है उसको, तो वो अपने 2 को शेयर करेगा, दूसरा वाला ऑक्सीजन 2 को शेयर करेगा, इस तरीके से 4 शेयर होंगे। अब मैं 4 इलेक्ट्रॉन कहूं या 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहूं, एक ही बात है, या फिर इंग्लिश में बोल दूं कि 2 pairs ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये भी सेम बात है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वापस से आ जाते हैं, चेक करते हैं, एक बॉल जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम है और उसके 4 तो खुद के क्रॉस हैं, 4 उसके शेयरिंग वाले हो गए, तो टोटल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जितने क्रॉस उतने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 4 उसके खुद के हैं जो उसने शेयर नहीं किए, 4 शेयर हो रहे हैं, उसमें से भी 4 जो शेयर हो रहे हैं उसमें से 2 उसके कंप्लीट है और 2 कहीं और से कंट्रीब्यूशन आया है। तो यहाँ पर इसके पास टोटल क्रॉसेस जो हैं वो 8 हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट या क्रॉस से, जो उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें जो आउटर मोस्ट शेल में है तो वो कितने हो जाएंगे एक एटम के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए, O2 के केस में 8 हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। अब दूसरे वाले एटम को देखो, उसके सर्कल को देखो ध्यान से, उसमें भी क्या है, उसके 4 खुद के क्रॉस हैं और 2 क्रॉस उसने लगाए हैं शेयरिंग में, 2 क्रॉस कहीं और से शेयरिंग के आए हैं। तो एक बॉल जब हम बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे कि उसको वो 4 जो उसने शेयरिंग में दोनों की कंट्रीब्यूशन से मिले हैं वो उसकी बॉल के अंदर कवर होना चाहिए। उस बॉल के अंदर उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, साथ में शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इस तरीके से जो O2 मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है, उसमें क्या होता है, उसमें हो रही है शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर कहें कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की। तो एक जोड़ी जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक सिंगल लाइन बना देते हैं बिटवीन एटम्स। जैसे हाइड्रोजन एटम्स में हुआ था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हमने एक सिंगल लाइन बनाई थी जो ये बता रही है कि वहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 लाइन इसका मतलब है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लाइन का मतलब है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 लाइन बनाएंगे तो उसका मीनिंग होगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें कितनी लाइन्स बनानी पड़ेंगी, हमें 2 लाइन बनानी पड़ेंगी, क्योंकि 1 लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है, 2 लाइन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाएगी। इसी तरीके से जब भी कोई चीज सीखते हो तो उसके पीछे का लॉजिक सीखा करो, उससे क्या होगा ना, आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आएगी बाद में जब आप खुद सॉल्व करोगे। तो हम लोग, आपने ये बहुत बड़ी चीज सीख ली, आप लोगों को बड़ी क्लासेस में जब सिंपली ये बोला जाएगा कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड का मतलब है कि 2 लाइन बनती है, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2 लाइन बनती है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड बनता है। तो ये बात आप लोगों ने कितनी आसानी से सीख ली यहाँ पर कि कैसे बनता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनता है 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, जिसमें से 2 एक एटम की तरफ से आते हैं, 2 दूसरे एटम की तरफ से आते हैं। और इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, फिगर 4.3 की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हम अपने डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, इस बार हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सीखेंगे, हम और भी ज्यादा शेयरिंग कराएंगे। तो और भी ज्यादा शेयरिंग कराने के लिए हम दूसरा एटम इस बार चूज करेंगे, वो एटम होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का आप लोगों को फॉर्मेशन दिखाया गया है, N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाया गया है वैसे तो फिगर 4.4 पेज नंबर 60 में, लेकिन हम इसको भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग जब प्रैक्टिस करने बैठो तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखो, शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, बाकी के जो बचे कुचे हैं वो कहाँ डालोगे, L शेल में डाल दोगे। तो कितने बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन को L शेल में डाल दोगे। अब देखो, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है, अभी भी इसके पास तो कमी है, इसको तो 8 चाहिए थे तभी तो स्टेबल हो पाता, अभी स्टेबल नहीं है ये, तो इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। अब इसमें भी दिक्कत यही आती है कि 3 इलेक्ट्रॉन की ना तो ये गेन कर सकता है कहीं से, ना तो ये मांग सकता है किसी से, ना ये अपने 5 के 5 किसी को दे सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में जब हम कार्बन के 4 दे रहे थे तो इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी, और अगर हम नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए नाइट्रोजन के ना हम 5 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ना इसको 3 कहीं से दे सकते हैं पूरे के पूरे कंप्लीटली। तो ये क्या करेगा, ये भी शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर जब N2 मॉलिक्यूल बन रहा होता है तो वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन के सबसे बाहर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपने अभी अभी सीखा 5 हैं। तो उसमें उसने क्या किया, एक नाइट्रोजन आपने बनाया और उसके चारों ओर आपने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए। अब इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, जैसे जैसे कमी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे देखो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उसमें H और H के बीच में आप लोगों ने एक के ऊपर एक लिखा था X को, यानी कि क्रॉस जो बनाया था या फिर डॉट जो बनाए थे आपने हाइड्रोजन एटम के बीच में, वो आपने एक के ऊपर एक बना दिए थे। ऑक्सीजन में आपने क्या किया था, इसमें 2 की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो आपने इस बार फिर से क्या किया था, डॉट्स को या क्रॉस को ऐसे बनाया था कि वो डॉट्स या क्रॉस 2 O एटम्स के बीचों बीच आए। तो यहाँ पर भी इस बार जितनी कमी होती है उतने डॉट्स या क्रॉस बीचों बीच आने चाहिए। इस बात को ध्यान से समझो, जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उनके बीचों बीच डॉट या क्रॉस एक ही आया था। अब ऑक्सीजन में जब हमने बनाया था तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी तो ऑक्सीजन के बीचों बीच डॉट या क्रॉस जब हमने एक ऑक्सीजन की तरफ से बनाया था तो 2 बनाए थे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में 3 की कमी है तो 3 क्रॉस एक नाइट्रोजन की तरफ से N और N के बीच में आना चाहिए। तो जब आप लोग बना रहे होंगे तो आप N लिखेंगे, कैपिटल N लिखेंगे, और उसके साथ में आप इस तरीके से बनाएंगे कि दूसरे एन के साथ जब वो शेयरिंग करे तो उनके बीचों बीच तीन एक एन की तरफ से एक नाइट्रोजन की तरफ से और तीन दूसरी नाइट्रोजन की तरफ से कंट्रीब्यूशन आने चाहिए। जितनी कमी होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उतनी ही वो शेयरिंग करते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन्स की एक नाइट्रोजन को कमी थी, एक नाइट्रोजन एटम को, तो उसने तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी कर दी। जब उसने दूसरे नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्डिंग करी, तो दूसरे नाइट्रोजन ने भी अपने तीन इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और दोनों ने मिल करके थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन या फिर छह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। दोनों नाइट्रोजन एटम्स ने मिलकर के छह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी या फिर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करी या फिर तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयर करी। तीनों बातें बिल्कुल सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। तो आप लोगों को तरीके भी सारे पता होने चाहिए। और जब यहाँ पर शेयरिंग हुई है तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक पेयर को एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, दो पेयर को दो सिंगल लाइन से दिखाते हैं, तो तीन पेयर को कितने सिंगल लाइन से दिखाओगे? तीन सिंगल लाइन से दिखाओगे। और ऐसे बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल माने तीन, तो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यानी कि थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, छह इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बाकी की बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या करना है, आपने जो आज की क्लास में पढ़ा है, सीखा है, उसको खुद से एक बार रिवाइज कर लेना। फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आए तो अपने टीचर से जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।